मजे किस में? पिछली चंद मजालिस में हर मजलिस में मशायख के एक अदब को बयान किया गया। हर दौर में मशायख के आदाब को लिखा गया, मशायख के आदाब को बयान किया गया। और उसकी वजह यह है कि मशायख का आदाब मलहूज़ खातिर अगर नहीं रखा जाएगा तो कई मरतबा सालिक को शेख के पास आके भी वो फायदा नहीं होगा जो उसको होना चाहिए। तो मशायख के आदाब में से एक अदब ये भी बयान किया गया कि सालिक को अगर शेख के पास हर रोज भी आना पड़े तो वो तलब के साथ आए, बेतलबी के साथ। ये भी अदब बयान किया गया कि सालिक जो है वो अपने शेख को अपने लिए सबसे अनफा समझे, सबसे ज्यादा नफा बख्श समझे। तो कई मरतबा सालिकीन जो है वो शेख के बारे में ये गुमान रखते हैं कि दूसरे मशायख बेहतर है। तो मशायख ने इसको बेअदबी कहा कि जी ये सोचना कि दूसरे शेख बेहतर है या फलां शेख बेहतर है। और इसकी मिसाल दी कि जो सालिक का अपना शेख है उसकी मिसाल माँ की तरह है। मुमकिन है एक बच्चे की माँ से बेहतर दूसरी माएँ हों, तालीम के एतबार से, घर के एतबार से, खानदान के एतबार से, जहानत के एतबार से, मगर इस सब के भी बावजूद उस बच्चे के लिए जो उसकी अपनी माँ फायदेमंद हो सकती है वो कोई और नहीं हो सकता। पिछली ही मजालिस के अंदर हमने एक अदब मशायख का और भी बयान किया जो किताबों में अकाबरीन ने लिखा कि सालिक जो है वो एक वक्त में एक ही शेख के साथ इस्लाह का ताल्लुक रखे। इंसानी अकल तो यही कहती है कि जितने ज्यादा मशायख के साथ ताल्लुक होगा तो शायद उतना जल्दी सुलूक तय हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो यही कहती है कि जी अगर एक शेख के साथ ताल्लुक रखेंगे और फर्ज करें 10 साल में अल्लाह का मुकर्रब बनना है तो क्यों ना दो के साथ ताल्लुक रख के 5 साल में बन जाए। मगर मशायख ने फरमाया कि ऐसे सोचना ये भी बेअदबी है, दो मशायख के साथ ताल्लुक रखना मशायख ने इसको बेअदबी के जुमरे में लिखा है, बल्कि मशायख ने इस चीज से बड़ी सख्ती से मना किया है। और इसकी मिसाल ये दी है कि जो शख्स एक वक्त में दो मशायख के साथ ताल्लुक रखता है उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक वक्त में दो घोड़ों पर सवार होता है, और जो शख्स एक वक्त में दो घोड़ों पर सवार होगा वो गिरेगा। तो दो तेज घोड़े भी होंगे, अच्छे घोड़े भी होंगे, तगड़े घोड़े भी हैं, अगर दो पे एक साथ सवारी करेगा तो गिरना है, इसके मुकाबले में एक कमजोर घोड़े पे सफर करेगा तो फिर भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगा। मशायख ने इसकी मिसाल ये भी दी है कि एक शख्स जो दो मशायख के साथ या एक से ज्यादा मशायख के साथ ताल्लुक रखता है वो एक वक्त में दो दरवाजों से दाखिल होने की कोशिश। तो इसलिए एक से ज्यादा मशायख के साथ ताल्लुक रखना बातनी सफर को तेज नहीं बल्कि बातनी सफर को स्लो कर देता है, बल्कि दिल में से जो एक अदब और एक जो मशायख की दिल में एक मोहब्बत होती है उसमें भी कमी को पैदा करती है। आज की इस मजलिस में मशायख के आदाब में से एक और बड़ा अदब बयान करना मकसूद, और वो ये है कि सालिक शेख की जब खिदमत करे तो शेख का एहसान न समझे। शेख की खिदमत करना तो बहुत बड़ी बात, किसी भी मुसलमान की जब इंसान खिदमत करता है तो जिसकी खिदमत की जाए उसको फायदा कम है, जिसको खिदमत की तौफीक मिल रही है उसको फायदा ज्यादा है। इसे भाग में आता है कि जो शख्स दूसरों के काम जाता है अल्लाह रब इज्जत उसके कामों में लग जाते हैं। अब बताइए फायदा किसको ज्यादा है, जिसकी खिदमत की जा रही है उसको ज्यादा है या जो खिदमत कर रहा है उसको ज्यादा है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स दूसरों की खिदमत के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, और ये हदीस हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मक्तूबात में भी नकल फरमाई है, तो जो शख्स दूसरों की खिदमत के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं, और ये फरिश्ता इबादत करना शुरू करता है, कयामत के दिन की सुबह तक इबादत करेगा, और ये सारी इबादत इस खिदमत करने वाले के नाम आया। तो खिदमत के लिए एक कदम बढ़ाने पर इतना अजर, तो जो हर वक्त मुख्तलिफ लोगों की खिदमत में मशगूल है अल्लाह। अगर खिदमत का एक और भी फायदा है कि खिदमत से इंसान के अंदर झुकाव और आजिजी भी आती है, इसलिए खानकाहों पे ये नहीं कि सालिक को जो खिदमत करना चाहे खुशी खुशी उससे खिदमत ली जाए, मशायख जबरदस्ती खिदमत भी देते हैं, जबरदस्ती ऐसे कामों में डालते हैं कि जिसमें सालिक जो है उसके अंदर झुकाव पैदा हो। कई मरतबा इंसान के ओहदे की वजह से, उसके माल की वजह से, या उसकी अपनी सोच की वजह से वो अपने आप को खिदमत से बालातर समझता है, वो ये समझता है कि खिदमत जो है वो तो छोटे लोगों का काम है, और ऐसा सोचने वाला जो है वो बहुत बड़ा रूहानी मरीज है असल में। तो मशायख जहां और चीजों का इलाज करते हैं वो इस खिदमत को भी एज ए टूल यूज करते हैं इलाज के लिए, तो डांट डपट भी की जाती है ये भी एक टूल है, नसीहत की जाती है ये भी एक टूल है, जिक्र मामूलात करवाए जाते हैं ये भी एक टूल है, और खिदमत करवाई जाती है ये भी सालिक की इसलाह का एक टूल है। हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह हजरत कासिम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, तो क्योंकि बड़े आलिम थे तो जब हजरत की खिदमत में हाजिर हुए तो आके उन्होंने बताया कि हजरत दारुलूम का सदर भी हूँ, तो अल्लाह ने बड़ा ओहदा दे दिया है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों मुसलमानों में बड़ी इज्जत है, हिंदुस्तान में भी बड़ी इज्जत है, हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मुझसे मिलने से बड़े खुश होते हैं, तो अल्लाह ने ओहदा भी बड़ा दिया है, माल भी बहुत दिया है, इख्तियारात भी बड़े दिए हैं। मजे की बात कि अल्लाह ने हजरत को जाहिरी शक्लो सूरत भी बहुत दिल फरेब दी थी, तो हर लिहाज से एक बंदा ऊंचा जो समझा जाता था ये मामला था। तो आके हजरत की खिदमत में अर्ज किया, हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अक्त थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, आपकी खानकाह पे इसलिए आया हूँ कि ये सारी चीजें होती हैं, इतना बड़ा होता और इतना माल और इतना, हर बंदा बड़ा समझता है तो दिल में थोड़ा सा उजब आ जाता है। तो कोई वजीफा बताएं कि दिल में ये उजब ना आए, मैं अपने आप को कमतर समझूं। क्योंकि शरीयत को समझते थे, इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, बड़े आलिम थे कि जब तक आजिजी नहीं आएगी तब तक अल्लाह का मुकर्रब नहीं बन सकता। तो हजरत से अर्ज किया कि हजरत कोई वजीफा बताएं कि अपने आप को बड़ा ना समझू। तो फरमाया वजीफा कोई नहीं है, बस आना जाना जरा ज्यादा रखो, और जब जब भी खानकाह पे आओ तो ये जो आए हुए सारे लोग हैं ना, बस बाहर उनकी जूतियों को सीधा कर दिया तो खुद ब खुद दिल का मामला सीधा हो जाए। तो पता चला कि खिदमत जो है उसका फायदा खिदमत करने वाले को ज्यादा है, करवाने वाले को थोड़ा है। और खानकाहों पे ये खिदमत जबरदस्ती करवाई जाती है ताकि दिल जो है उसके अंदर से बातनी बीमारी और ये बड़ी बीमारी तकब्बुर की, उजब की, अपने आप को बड़ा समझने की, इसमें कमी आती है। सच्ची बात तो यह है कि खिदमत जो है ये बहुत ही बाबरकत चीज है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम खिदमत में लग जाते हैं तो फिर जो मामूलात शेख ने बताया वो करना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। शेख ने इस बात को भी रद्द किया, तो फरमाया कि जो खिदमत ज्यादा करता है जिक्र और इबादत की भी तौफीक उसी को ज्यादा मिलती है, ये ऐसी बरकत वाली चीज है। चुनाचे हमारे जानने वाले एक साथी एतकाफ की खिदमत की जमात के हेड है, तो एतकाफ में क्योंकि चंद सौ लोग होते हैं तो एक खिदमत की जमात बनती है, वो खिदमत करती है। तो वो दिन रात लगे हुए होते हैं सहरी और इफ्तारी का, खाने का तैयार करना, लोगों को सुलाने का, तो सिक्योरिटी का काम, फिर बर्तन धोने, तो फिर काफी सारे काम, तो बेचारे थक भी जाते हैं, रोजे भी होते हैं। तब इतनी खिदमत जो कर रहे होते हैं तो उम्मीद तो यही होती है कि जी अब बेचारे बाकी मुतकफीन तो खूब इबादत कर रहे होंगे, ये आराम कर रहे हैं, तब ये लोग इबादत तो नहीं कर सकते, अब ये काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो खिदमत करने वालों में से जो उनके बड़े थे उनसे एतकाफ के दिनों में मुलाकात हुई, तो उनसे इबादत के बारे में साजिश ने पूछा कि जी ठीक है अब आप लोग खिदमत कर रहे हैं तो ज्यादा तो नहीं कर सकते इबादत, मगर ये भी सही नहीं है कि इबादत बिल्कुल ना की जाए। तो उनको तरगीब भी आजिज दे रहा था कि जी पूरे महीने में एक मरतबा तो कुरान मुकम्मल करना जरूरी है, तो आपने कितने कुरान मुकम्मल किए? और उनका जवाब सुनकर ही आजिज हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी 17 कुरान मुकम्मल कर, और हर मरतबा हर मामले में खिदमत में वो आगे। मैंने कहा 17 कुरान सिर्फ रमजान में मुकम्मल करते हैं या इसके अलावा भी कुरान पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी हर महीने 17 कुरान मुकम्मल। तो पता चला जो खिदमत ज्यादा करता है उसको इबादत की तौफीक भी ज्यादा होती है। एक आखिरी बात मशाइख से सुनी कि ये मुमकिन है कि हर खिदमत करने वाला अल्लाह वाला ना हो, ये मुमकिन है कि हर खिदमत करने वाला ये अल्लाह वाला ना हो, मगर ये मुमकिन नहीं है कोई शख्स अल्लाह वाला बन जाए खिदमत किए बगैर। जब तक खिदमत नहीं करेंगे अल्लाह वाला बनना ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कुछ लोग खिदमत को बहुत ही अजीब नजर से देखते हैं कि यार ये काम क्या शुरू करवा दिया हमें करवा, मगर इसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में खादिम बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी अलहम्दुलिल्लाह। दुआ से पहले बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आज इस आदेश का सफर है, इंशाअल्लाह तकरीबन 12-13 दिन का सफर है, और उसके बाद फिर हाजिरी होगी, तो मैसेज के जरिए से आपको मुतला कर दिया जाएगा। तो आज ये सुबह की महफिल में से आखिरी मजलिस है, 10-12 दिन के लिए मजलिस मौकूफ रहेगी। जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام.